ओम शांति। तो मेडिटेशन के इस पहले सेशन में आप सबका स्वागत है और हम बहुत प्यार से दीदी जी का भी स्वागत करते हैं। दीदी जी से सब परिचित है ना, कल मिले थे गीता दीदी, हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर है और हम सब बहनों के भी बहुत पालना उन्होंने की है और जितने भी आत्माएं आती हैं उनसे उनको इतनी अच्छी पालना देती हैं और ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल रीति से समझाती है कि बुद्धि में बैठ जाता है और जीवन में आ जाता है। तो आज हम एक्सप्लोरिंग अवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, इस मेडिटेशन सेशन का फर्स्ट सेशन हम सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। तो सभी स्वधर्म में स्थित होकर पहला लेसन सुनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से स्थापन हुआ है 88 वर्षों पूर्व, तब से ही हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा हम करते रहे हैं और हमारी सेवा के दो मुख्य साधन हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान हम देते हैं, जिन सनातन सत्यों के बारे में भक्ति में अनेक ऋषि मुनियों की संप्रदाय स्थापक धर्म स्थापकों की विविध मते रही हैं। अब एक सत्य मत परमात्मा हमें बता रहे हैं और योग कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई शारीरिक आसन प्राणायाम करने की बात नहीं है, इसमें रटना जपना मुख से भजन गाना ऐसी कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, क्योंकि इस योग का आधार कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई साधन नहीं है। इस योग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। स्वयं परमात्मा जब चक्र पूरा होता है, 5000 वर्ष का दूसरा कल्प शुरू होना होता है। उस संधि काल में संगम के समय स्वयं परमात्मा आकर हमें योग सिखाते हैं। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए कहते हैं कि पहला प्रश्न यही हुआ कि को हम, मैं कौन हूँ। इसी का प्रत्युत्तर विभिन्न ऋषि मुनियों ने, विभिन्न साधु संतों ने यही दिया। किसी ने कहा हम सो हम, किसी ने उत्तर दिया कि हम आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। अनेकानेक प्रत्युत्तर मिले, इसलिए हिंदू भाई बहने अनेक मतों में, अनेक पंथों में, अनेक संप्रदायों में भटक गए। हर धर्म में इस बात का महत्व है, इसलिए क्रिश्चियन भाई बहनों ने भी ये कहा कि नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, पहचानो। मुस्लिम भाई बहने भी कहते हैं कि खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने काव्य में ये कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है हम नहीं जानते हैं। हम अपना शारीरिक स्वरूप, बाह्य स्वरूप को जानते हैं, परंतु आंतरिक स्वरूप को नहीं जानते हैं। आज इस सत्र में हम अपना आत्मिक स्वरूप जानेंगे। जन्म लेते ही छठी के दिन हमें शारीरिक नाम मिलता है। हम अपने आप को जानते हैं। माताएं भी बचपन से शरीर का परिचय ही बच्चे को पक्का कराते हैं कि तुम पप्पू हो, मुन्ना है, तो अपना शारीरिक स्वरूप ही पक्का कराते हैं। अगर बच्ची है तो कहेंगे तुम मुन्नी हो, बेबी हो, परंतु अपना आत्मिक स्वरूप हमें कोई भी पक्का नहीं कराते हैं। तो जन्म से ही हम अपना शारीरिक स्वरूप जानते हैं। हम आपस में मिलते हैं, एक दो का परिचय लेते हैं, आप कौन है, आपका परिचय क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना दुनियावी दैहिक परिचय ही देते हैं। हम अपना नाम बताते हैं, संबंध बताते हैं, अपना कर्तव्य बताते हैं, मीन्स हम अपना शारीरिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। हमें अपना शरीर का परिचय, जिसको हम मेरा समझ करके वो ही एक दो को बताते हैं। इसलिए हम देह अभिमानी बन गए हैं, शरीर के भान में आ गए हैं, हम देह अभिमान में ही रहते हैं। हम कह सकते हैं हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, इसलिए हम एक दो को शरीर का परिचय ही बताते रहते हैं। हम अपने वास्तविक आत्म परिचय को भूल गए हैं, इसलिए जीवन का लक्ष्य भी यही बन गया है। हम सांसारिक बन गए हैं, हमारा जीवन भोगी बन गया है, हम योगी नहीं रहे हैं। हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण है, परंतु हम इसको भूल गए हैं। हम भौतिक और भोगवादी बन गए हैं। हम सांसारिक भोगी जीवन ही जीने लगे हैं। तो हमें अपने आप को पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम शरीर हैं? शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू का बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि शरीर पांच तत्वों से बना हुआ जड़ पुतला है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया। पंचत्वम गतः संस्कृत में ऐसे कहा जाता है। हम हिंदी भाषा में कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर तो पंच तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है, इसलिए पुनः पांच तत्व में मिल जाता है। परंतु जब हम मनुष्यात्मा, जीवात्मा कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं। शरीर जिसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं, मानव शरीर कहते हैं, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर प्लस आत्मा, चैतन्य शक्ति मिलाकर मनुष्यात्मा, ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी प्लस आत्मा बीइंग मिलाकर कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि शरीर तत्वों का बना हुआ जड़ है और बीइंग माना पांच चैतन्य शक्ति आत्मा मिलाकर ह्यूमन बीइंग जीवात्मा कहा जाता है। अब तक हम अपने को जीव समझते रहे, परंतु हम जीव नहीं हैं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हूं। चित्र में बताया है कि भौतिक शक्ति क्या है। भौतिक शक्ति जिसके द्वारा आत्मा देखती है, समझती है। लाइट की शक्ति, पवन की शक्ति, ये सारी भौतिक शक्तियां हैं। अग्नि की शक्ति, ये सारी भौतिक शक्ति हैं। इन भौतिक शक्ति के आधार पर टीवी, रेडियो, हीटर, ये सब साधन चलते हैं। इसलिए जैसे बिजली की शक्ति से ये बल्ब जलते हैं, फोकस जलते हैं, ये ट्यूब लाइट जलती है। पर हम जानते हैं कि देखने में बल्ब आता है, ट्यूब आती है, फोकस आता है, परंतु सूक्ष्म राज क्या है कि बिजली की शक्ति से बल्ब प्रकाश देता है, ट्यूब लाइट देती है, हीटर गर्मी देता है। देखने में हीटर, टीवी आता है, परंतु बिजली की शक्ति अति सूक्ष्म है, उनको हम देख नहीं सकते हैं। पर बिजली की शक्ति से ही ये सारे साधन हमें प्रकाश, गर्मी और शक्ति के रूप में अनुभव होती है। चैतन्यता क्या है? भौतिक शक्ति के बारे में तो हम जान गए, समझ लिया, पर चैतन्यता क्या है? हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उस विचार को हम समझते हैं और समझ कर कर्म में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। हमें स्मृति रहती है, हमें स्मृति का सुख दुख का अनुभव होता है, हमें औरों के प्रति सहानुभूति होती है, तो ये विचार, इच्छा, स्मृति, कर्म, दुख की अनुभूति, सहयोग की अनुभूति, ये चैतन्यता है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम कहते हैं डेड बॉडी को जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो, जल्दी ले जाओ। हॉस्पिटल में हम पेशेंट को दाखिल करते हैं और जब ऑपरेशन फेल हो जाता है, जब उसको निकालते हैं तो कहते हैं डेड बॉडी को ले आए। तो पेशेंट और डेड बॉडी में क्या अंतर है? चैतन्य शक्ति निकल जाने के बाद हम उसको डेड बॉडी कहते हैं। जब तक चैतन्य शक्ति है, हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल गई, वो डेड बॉडी बन गए। फिर उसको जला देते हैं, काट देते हैं या दफनाते हैं, पर हमें कोई अनुभव नहीं होता है। इसलिए हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं चैतन्य शक्ति अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर विनाशी है, जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मा शरीर धारण करने के बाद भ्रुकुटी में स्थित होती है और मस्तक के बीच स्थित होकर पूरे शरीर का संचालन करती हैं। हम आत्मा भ्रुकुटी में बैठकर इस शरीर के सभी कर्मेंद्रियों को चलाती हैं। तो आत्मा मस्तक में स्थित होकर कर्म करती है, क्योंकि मस्तक ब्रेन शरीर की मेन कर्म करने की ऑफिस है। हम वहां बैठकर मस्तक द्वारा सभी कर्मेंद्रियों को सेंसेशन पहुंचाते हैं और अनुभव करते हैं। उसी की यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं। हम तिलक करते हैं मस्तक के बीच अक्षत कुमकुम लगाते हैं, परंतु हम जानते नहीं हैं कि अविनाशी आत्मा को सत्य ज्ञान की कुमकुम से रंग लगाना है। हम ये रस्म रिवाज कर लेते हैं, पर हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, मस्तक के बीच ब्रुकुटी में निवास करने वाली आत्मा चमकता हुआ चैतन्य सितारा है। तो अति सूक्ष्म आकार बिंदु को ही कहेंगे ना, न कि त्रिकोण या ट्रायंगल या स्क्वायर अष्टकोण, ऐसा आकार नहीं है। अति सूक्ष्म आकार बिंदु को कहते हैं, जिसकी न लंबाई है न चौड़ाई है न डेप्थ है। विज्ञान में ये उसकी परिभाषा बनाई है। तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा निवास करती है। हम कहते हैं मस्तक का ये स्थान है, वहां सेंसेशन कैच होता है, पर कौन कैच करता है ये हम नहीं जानते हैं। आत्मा वो सेंसेशन ग्रहण करती है और फिर कर्मेंद्रियों द्वारा जिस स्थान पर कुछ घाव हुआ, दर्द हुआ, वो अनुभूति आत्मा को कैच होती है। इस प्रकार चित्र में बताया है, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, पर मस्तक बीच स्थित चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा ही ये सारे कर्म करती है। तो चित्र में आत्मा और शरीर की तुलना की गई है कि शरीर एक कार के समान है और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर रूपी कार की चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान हूँ। एक ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाता है, लेकिन वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है, वो अपने आप को ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला गाड़ी से अलग चैतन्य शक्ति समझता है। तो हम भी इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर मकान है, हम उसके मालिक हैं। हम अपने को मकान नहीं समझते हैं, हम महसूस करते हैं मकान अलग है, मैं इसका ऑनर अलग हूँ। अभी आप सोफा पर कुर्सी पर बैठे हैं, मैं कुर्सी नहीं कहते हैं, मेरी कुर्सी मेरा सोफा ऐसा कहते हैं ना। तो मकान अलग है, मैं मालिक अलग हूँ। नीचे बताया है हम वस्त्र पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, परंतु हम ड्रेस नहीं हैं। हम ड्रेस पहनकर जो रोल प्ले करते हैं, हम ये रोल नहीं हैं। जो पार्ट प्ले करते हैं वो पार्ट नहीं है। शरीर रूपी ड्रेस से जो रोल हम प्ले करते हैं, हम वो नहीं हैं, हम आत्मा एक्टर हैं। कोई हीरो एक्टर वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं, कोई फिल्म में वो पागल का रोल प्ले करता है, दूसरी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करता है, तीसरी फिल्म में वो शराबी का रोल प्ले करता है। इससे वो हीरो एक्टर, उसको हम ये नहीं कहते हैं कि अमिताभ बच्चन कुली है, हाँ उसने कुली का पार्ट प्ले किया, ऐसे कहते हैं ना। ये शराबी है, ये पागल है, ऐसा नहीं कहते हैं। वो वैरायटी रोल प्ले करता है। तो ये हम शरीर द्वारा एक ही दिन में कितने वैरायटी रोल प्ले करते हैं। माँ के साथ बेटी के रोल में है, पति के साथ पत्नी के रोल में है, बच्चों के साथ माँ बाप के रोल में है, ऑफिस में आप ऑफिसर के रोल में हैं। ये वैरायटी रोल प्ले करते हैं, पर हम उसके अभिमान में नहीं आते हैं। वो रोल हम साधारण रीति प्ले करते हैं। तो हम एक्टर हैं, एक्ट करने वाले हैं, और शरीर हमारी ड्रेस है। शरीर रथ है, आत्मा रथवान है। गीता में भी कहा है शरीर की तुलना रथ से की है और आत्मा को रथी देही कहा गया है। शरीर देह है। तो ये श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि शरीर नव द्वार वाली एक नगरी है और इस नगरी का संचालक मालिक आत्मा है। आत्मा पंछी है, शरीर एक पिंजर के समान है। ये वैरायटी कंपैरिजन किया है। और शरीर तो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है। आत्मा मन और बुद्धि द्वारा समझती है, बात को अंडरस्टैंड करती है। तो आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? सोचना, विचार करना, कल्पना करना, योजना बनाना, ये मन का कार्य है। एक सेकंड में मन 30 से 40 विचार कर लेता है, एक मिनट में आत्मा इतने विचार कर लेती है। आप सबको अनुभव है कि जब हम चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो विचारों की ये स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। हम 50 से 60 विचार कर लेते हैं। इसलिए हर कोई चाहता है हमें तनाव मुक्त करो, हमें सकारात्मक चिंतन सिखाओ। यहाँ भी जो लोग आते हैं, वैरायटी कंपनी के, संस्था के लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे स्टाफ को, मैनेजर्स को तनाव से मुक्त होना सिखाओ, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाओ। तो मन का कार्य है सोचना। एक है हमें आवश्यक चिंतन जरूर करना है, नेसेसरी थॉट्स जरूर चलाने हैं। हमें नौकरी के बारे में, परिवार के बारे में, शरीर तंदुरुस्ती के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में जो आवश्यक है वो चिंतन हमें जरूर करना है। तो ये हैं मन के नेसेसरी थॉट्स जो हमें सोचने ही हैं। परंतु जो नेसेसरी थॉट्स है वो आजकल इच्छाओं के वश, वो भी व्यर्थ थॉट्स बन गए हैं। वेस्ट थॉट्स हमें नहीं चलाने हैं, अनावश्यक बिन जरूरी चिंतन हमें नहीं करना है। हम दूसरों के बारे में बहुत वेस्ट थॉट्स चलाते हैं, परंतु जब ज्ञान मिल जाता है हम व्यर्थ से मुक्त और नेसेसरी थॉट्स चलाते हैं। हमें नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, विकारों के वश, अवगुणों के वश जो हम सोचते हैं वो नकारात्मक चिंतन है। हमें सकारात्मक चिंतन करना है। जिस थॉट से हमारा भी कल्याण होता है, औरों का भी कल्याण होता है, वो पॉजिटिव थॉट्स हमें चलाने हैं। आज हमारा जीवन इतनी इच्छाओं के वश हो गया है, इतनी विकृतियों के वश हो गया है कि पॉजिटिव थॉट्स तो नेक्स्ट टू नील हो गए हैं, बाकी नकारात्मक और वेस्ट थॉट्स ही चलते रहते हैं। तो अब मन का उपयोग आत्मचिंतन परमात्म चिंतन सबका शुभ चिंतन इस पॉजिटिव थॉट्स में हमें करना है। तो आत्मा की संकल्प शक्ति विचार शक्ति हमारे मन के थॉट पावर को मनन शक्ति कहा जाता है। तो ये मन का कार्य है कि हम उसको पॉजिटिव थॉट में लगाएं और विचारों की स्पीड को हम शांत बनाएं। अब विचार तो अनेक आते हैं। एक मिनट हम सब शांत बैठ जाएं, परंतु क्या मन शांत बनेगा? हमें अनेक विचार आएंगे, कई सोचेंगे कि जैसे क्लास पूरा होगा हम चाय पियेंगे, हाँ हम नाश्ता करेंगे। कई विचार खाने पीने के हमें आ जाएंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। परंतु सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। हम निर्णय करते हैं कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, ज्ञान के वैरायटी सेशंस है हम उसको अटेंड करेंगे। तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा के निर्णय शक्ति जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि मन के विचारों को समझती है, राइट रॉन्ग अंडरस्टैंड करती है, डिसीजन लेती है, चॉइस लेती है। इसलिए बुद्धि को अगर हम शुद्ध बनाना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि का योग, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा के प्रति करना चाहिए। हम भक्ति में भी गाते रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। हम ईश्वर से सदमति मांगते हैं, मांगना नहीं है, वो उसका दाता ही है। उसकी याद से बुद्धि शुद्ध सतो प्रधान बनती है। तो बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, करें न करें, ये अच्छा है या बुरा है, ये हम सोचते हैं, ये बुद्धि का कार्य है। जैसे ही आप सबको माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज में आने का निमंत्रण मिला, आपके मन में बुद्धि ने कई बातें अपने थॉट्स में विचारों में लाई होंगे, जाएं न जाएं, ये काम है वो काम है, परंतु आखिर आपने निर्णय किया कि हम जाएंगे। देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती हैं, कैसा योग सिखाती हैं। ये आपने निर्णय किया और आप यहाँ आए, पहुँच गए, ये आपका कर्म हुआ। तो बुद्धि के निर्णय के बाद जो कर्म हम करते हैं उससे बार बार जब जो कर्म हम करते रहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे में संचित होता है, उस संचित प्रभाव को स्वभाव संस्कार कहा जाता है। तो कर्म ही संस्कार बनते हैं और वो संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं, संचित होते हैं। तो बार बार कर्म जो करते हैं उसका जो दृढ़ प्रभाव पड़ता है, आत्मा में जो संचित हो जाता है, वो संस्कार कहा जाता है, जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं, आदत कहते हैं, जिसको हम सहज भाषा में स्वभाव संस्कार कहते हैं। जैसे रिकॉर्ड में गाना रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद टेप मशीन निकले, उसमें उसकी जो पट्टी होती है उसमें गाना रिकॉर्ड हो जाता है। और आजकल एक छोटी सी पेन ड्राइव में हजारों गीत रिकॉर्ड करके देते हैं। तो ये अति सूक्ष्म आत्मा में जन्म बाय जन्म हम जो कर्म करते हैं वो सारे ही कर्म रिकॉर्ड होते हैं, जिसके फल सुख और दुख में हम भोगते हैं। तो आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तब और कुछ भी साथ नहीं ले जाते हैं। हम जानते हैं जो कुछ इस दुनिया से हमने कमाया, इकट्ठा किया, जो शरीर संबंध हमें मिले हैं, वो तो यहाँ ही छोड़ करके हम जाते हैं। लेकिन आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? किए हुए कर्मों का प्रभाव संस्कार के रूप में आत्मा साथ ले जाती है। और जैसे संस्कार, ऐसी गति उसकी होती है, या सदगति होती है या दुर्गति होती है। किए हुए संस्कारों अनुसार हमारी गति होती है और उस अनुसार पुनः जो शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ सुख दुख की स्थिति हमें प्राप्त होती है। आज बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी तो कोई कर्म का संचय भी नहीं हुआ, पर कोई बीमार शरीर में पैदा होता है, कोई निर्धन परिवार में जन्म लेता है, कोई दुखी परिवार में जन्म लेता है, तो ये स्थिति उसके पूर्व जन्मों के संस्कार अनुसार उनको प्राप्त होता है। इसलिए विचार कर्म का बीज है, कर्म ही बार बार एक ही प्रकार के करते रहने से संस्कार बनते हैं और पुनः संस्कार अनुसार ही विचार चलते हैं। जो आदतें हम अपने आप में डालते हैं वो फिर हमें वो ही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, इसलिए पुनः वो ही विचार आते हैं। तो विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनते हैं और पुनः संस्कारों के वश हम वो ही कर्म करने से बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। इसलिए हमें संस्कार अगर बदलना चाहते हैं तो हमें क्या बदलना होगा? अपने व्यवहार को, कर्म को बदलना होगा। और कर्म को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा, हमें चिंतन को बदलना होगा। इसलिए हम यहाँ आत्मचिंतन, परमात्मचिंतन, शुभ चिंतन, कल्याणकारी चिंतन सिखाते हैं ताकि हमारे बिहेवियर चेंज हो जाए, हमारे कर्म ठीक हो जाए, तो हमारे संस्कार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो ये हमारी तीन आत्मा की आंतरिक शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार मिलकर उसको, उस चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। जैसे हाथ पांव, मुख, आंख, कान मिलाकर इसको शरीर कहा जाता है, इन कर्मेंद्रियों के सेटअप को शरीर कहा जाता है, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली आत्मा अपनी तीनों शक्तियों द्वारा कर्मेंद्रियों से कार्य कराती है। इसलिए कर्मेंद्रियां करणहार है, मन बुद्धि संस्कार का मालिक मैं आत्मा करावनहार हूँ, करणहार हूँ। तो आत्मा मालिक है, जब वो मालिक गफलत में आ जाता है, विकारों के वश हो जाता है, विकारी बन जाता है, तो वो जब मालिक ही गफलत में है, अज्ञानता में है, विकारों के वश है, तो नेचुरली जो कर्मचारी है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार शक्तियां हैं, वो गफलत में मालिक है तो वो गलत कर्म करने लगते हैं। आज भल हम विकारी, पतित, कामी, क्रोधी, लोभी बन गए हैं, हम खुद ही आरती में, भजनों में गाते रहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं कामी, क्रोधी, लोभी बन गया हूँ। हम गाते हैं, मोरे अवगुण चित्त न धरो। हम प्रभु जी को कहते हैं कि आप मोरे अवगुण चित्त न धरो, पर हम खुद क्या करते रहते हैं, अवगुण दूसरों के चित्त पर धरते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओरिजिनली नेचर से कामी क्रोधी लोभी हैं। हम अपने ओरिजिनल नेचर से इन सात गुणों के स्वरूप हैं। परमात्मा के लिए आप जानते हैं कि वो आत्मा सात गुणों का स्वरूप है और परमात्मा इन सात गुणों का सागर है, अखुट भंडार है। हमारा ओरिजिनल स्वधर्म शांत है, हम सत्य हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये हमारे असली गुण हैं। इसलिए हरेक को शांति चाहिए। कोई गुस्सा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम गुस्से हो जाएं, हमारे साथियों को अच्छा नहीं लगता है। हम शांति से कहे तो सब सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए शांति हमारा स्वधर्म है, निज गुण है। पवित्रता हमारा निज गुण है। हमें जीवन में सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। हमें सब प्रेम करे वो अच्छा लगता है, हमारी कोई नफरत करे, घृणा करे वो अच्छा हमें नहीं लगता है। हमें सदा ज्ञान पाने की जिज्ञासा रहती है, हमें जानने की, सीखने की, समझने की हमेशा इच्छा बनी रहती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी बड़ों के चप्पल पहनते हैं, बड़ों के चप्पल जूते रखे हैं उनको पहनते हैं, क्योंकि उनको जिज्ञासा है कि इतना बड़ा ये क्या चीज है, हम क्यों नहीं पहन सकते हैं। तो ये है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का संस्कार। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप है, हम शक्ति स्वरूप हैं। हमें शक्तिशाली बनना पसंद है, हमें कमजोर, कायर, हिम्मतहीन पसंद नहीं है। तो ये हैं हमारे मूल सात गुणधर्म। हमें आनंद प्राप्त करना अच्छा लगता है, हमें कोई उदास रहे, गमगीन रहे वो हमें पसंद नहीं है। हम उनको तुरंत खुशी में लाने की, आनंद में लाने की कोशिश करते हैं। कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, परंतु अगर घर का कोई भी सभ्य मायूस रहे, हताश रहे, उदासी में रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उनको फिर से आनंदित करने की प्रसन्न बनाने की, खुशी में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये है, हमें सुख पाने की इच्छा रहती है, सुख की अनुभूति करने के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, हम साधन लाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। परंतु साधन सुख का आधार नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो जो साधन संपन्न है, जो धनाढ्य है, वो सुखी होने चाहिए थे। पर सभी धनाढ्य साधन संपन्न सुखी नहीं होते हैं। आज अमेरिका इतना संपन्न देश है, परंतु वहां अधिकतर लोग दुखी हैं, मानसिक रोगी हैं। वो क्या बताता है कि धन साधन सुख का आधार नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं, धन से साधन लाते हैं और हमारा घर आज साधनों से भर गया है, पर हम स्वयं अंदर से खाली हो गए हैं, उन गुणों की कमी हो गई है। हमारा अंतर, हम आत्मा खाली हो गए हैं, इसलिए इन गुणों को हमें अपने आप में फिर से भरना है, हमें शांत स्वरूप बनना है, हमें सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनना है, हमें पवित्रता धारण करनी है, ज्ञान और शक्ति अपने आप में लानी है। हम संबंधों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, साधनों के द्वारा ये अनुभूतियां, ये गुण अपने आप में प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु साधन से, धन से, दुनियावी संबंधों से, कर्म व्यवहार से हमें सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। ये हमें ज्ञान और योग से प्राप्त करना है। ज्ञान हमें समझ देता है राइट रॉन्ग क्या है, और योग हमें शक्तिशाली बनाता है। आज हमारे पास वेल्थ है, परंतु ये वैल्यूज नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज है पर हमारे में शक्ति नहीं है, तो विद्वत्ता प्राप्त होगी, पांडित्य प्राप्त होगा, परंतु शक्ति बिगर ज्ञान आचरण में नहीं आएगा। इसलिए नॉलेज के साथ पावर चाहिए। हमारे पास वेल्थ है, धन साधन है, परंतु विजडम नहीं है, तो हम वेल्थ का भी दुरुपयोग करेंगे। वेल्थ तो कईयों को बाप दादा के वर्से में भी मिल जाती है, पर अगर विजडम नहीं है तो वो वेल्थ को फालतू खर्च कर देता है। इसलिए वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। अगर हमारे पास थॉट्स हैं, मन चलता है, परंतु थॉट्स में एक्यूरेसी नहीं है, हम यथार्थ एक्यूरेट सोचते नहीं हैं, तो वो जो विचारों का धन है वो भी वेस्ट हो जाता है। आपके पास शब्द है, वाणी है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, परंतु अगर वाणी में स्वीटनेस नहीं है, मधुरता नहीं है, तो आपकी वाणी को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर हम कर्म करते हैं, व्यवहार बहुत कुछ करते हैं, बहुत रीत रस्म आप मनाते हैं, परंतु आपके कर्म अगर कल्याणकारी नहीं हैं, तो दूसरों को पसंद नहीं आएंगे। टाइम हमें मिला है, टाइम इज मनी कहा जाता है, परंतु टाइम इज मनी बट मोर देन मनी, पैसे से भी वो ज्यादा संपत्ति है। हम मनी तो कमा लेंगे, परंतु गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं टाइम वापस नहीं आता है। अगर समय का सदुपयोग करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, अपने और दूसरों के कल्याण में यूज करेंगे, तो वो टाइम कल्याणकारी कहेंगे, हम परोपकारी बन सकेंगे। तो ये सारी वेल्थ हमारे पास है, अगर वैल्यूज को जोड़ देंगे तो हमारे सभी वेल्थ का सही उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है हमारे अंदर हैं, हमारे आत्मस्वरूप में निहित है, हमें इसलिए अपनी स्थिति आत्मा अभिमानी बनानी है, कल्याणकारी बनानी है। जितना हम स्व में स्वस्थ का अर्थ क्या है, स्व में स्थित होना, हिल थाई सेल्फ कहते हैं ना, आप खुद ही खुद को स्वस्थ बना सकते हैं स्व में स्थित हो करके। तो स्व में स्थित होना है, उसके लिए हमें स्व चिंतन करना है, स्व रूप में स्थित होना है, स्वधाम में स्थित होना है, स्वधर्म में स्थित होना है। ये अभ्यास जितना आप करेंगे, स्वरूप, स्वधाम, स्वधर्म, स्वगुण माना स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, हमारा लक्ष्य है आत्मकल्याण करना, औरों का भी कल्याण करना। अगर हम इन बातों में स्व के ये सभी बातों में स्थित होंगे, तो हम स्व कल्याणकारी बन सकेंगे। इस चित्र में बताया है कि हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है। हम क्यों कहते हैं हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इस दुनिया में जब आते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, और जो कुछ कमाया, इकट्ठा किया, वो हम इस दुनिया में ही छोड़ करके जाते हैं। इसको कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो ये दुनिया तो पांच तत्वों की बनी हुई है, इसको फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है, ये लौकिक भौतिक दुनिया है, इसलिए यहाँ हमें भौतिक संबंधी भौतिक सुख के साधन मिलते हैं। ये दुनिया पांच तत्वों से बनी हुई है और हमें पांच तत्वों से पार जो छठवां तत्व है, जिसको हम अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व कहते हैं, हम आत्माएं उस ब्रह्म लोक में रहती हैं, जिसको हम मूल वतन ब्रह्म लोक परलोक परम धाम शांति धाम कहते हैं। हमारा वो असली घर है जहां हम ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। शरीर तो यहाँ ही छोड़ के जाते हैं। जब शरीर ही नहीं ले जा सकते तो संबंधियों को या संपत्ति को साधनों को कैसे ले जाएंगे? तो वो हमारा असली घर परम धाम शांति धाम है। वहाँ हम सभी आत्माएं अपने ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में रहते हैं और हमारे असली पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, जो सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। नीचे आसमानी रंग से जो बताया है वो स्थूल वतन है, भौतिक दुनिया है, जिसमें ये संसार का चक्र बताया है और सूर्य चांद सितारे बताए हैं। इन पांचों तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी परे छठवां तत्व ब्रह्म महतत्व कहते हैं, हम उस ब्रह्म लोक में रहते हैं। तो ये तीन लोक, बीच में सूक्ष्माकारी आकारी ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाए गए हैं, जो इन आँखों से देखना नहीं है, ये साक्षात्कार की दुनिया है, इसको हम दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक मूल वतन। तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, कोई भी स्थूल चीज जब वापस तत्व में मिलती है, मूल शक्ति में जब मिलती है, तो पहले वो स्थूल चीज लाइट का स्वरूप धारण करती है, फिर वो भस्म हो जाती है, मूल तत्व में मिल जाती है। इसलिए स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, बस ये तीनों लोक हैं। हम परम धाम के निवासी हैं, हमारे पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी, इसलिए तो हम उसको ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर देखकर उसे याद करते हैं, हम नीचे देखकर याद नहीं करते हैं, ऊपर देखकर याद करते हैं, ऊपर वाला कहते हैं। तो ये है हमारा वास्तविक आत्म परिचय। इस आत्म परिचय में स्थित होने के बाद ही परमात्मा से योग लगा सकते हैं, प्रभु मिलन हम कर सकते हैं। तो अब हम सभी अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठेंगे ताकि आप थके नहीं और चिंतन की शक्ति मस्तक द्वारा सभी कर्मेंद्रियों को पहुंच सके। मैं कैसे आत्मचिंतन करना है, मन ही मन में शांति की स्थिति में स्थित होकर वो कमेंट्री आपको दूंगी। उस कमेंट्री में जो सजेशंस विचार में दूं, वो आपको मुख से रिपीट नहीं करना है। साइलेंस में बैठकर मन ही मन हमें रिवाइज करना है, उसका अर्थ समझना है, रियलाइजेशन करना है। तो जितना आत्मभिमानी बनकर जो मैं कमेंट्री दूं, उसको आप मन ही मन रिवाइज करेंगे, उसका अर्थ समझकर रियलाइज करेंगे, उतना आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। इसलिए साइलेंस में बैठकर मन ही मन जो थॉट में दूं, उसको आप रिवाइज करेंगे। आंखें खुली रखें और मेरे मस्तक में देखें कि मैं भी आत्मा हूं और आप भी आत्मा है। आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति में गुरुओं के बताए अनुसार आंख बंद करके बैठते हैं, परंतु इससे बाहरी आंखें बंद हो जाती हैं। पर जो बुद्धि का तीसरा नेत्र है, मन की आंख है, वो बंद नहीं होती, एकाग्र नहीं होती, वो तो भटकती ही रहती। इसलिए मन की आंख अपने आत्म स्वरूप के प्रति और मेरे आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित करेंगे और एकाग्र हो सकेंगे। मैं चैतन्य शक्ति अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी आत्मा हूं। इस भौतिक दुनिया में आकर शरीर को धारण कर मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ, कर्म फल भोगती हूँ। ये दुनिया मेरे लिए अब कर्म क्षेत्र है। अच्छे बुरे सही गलत जो कर्म मैं इस कर्म क्षेत्र पर करती हूँ, मुझे ही सही गलत अच्छा बुरा फल भोगना होता है। मैं ही सोचता हूँ मैं आत्मा ही करता हूँ और मैं आत्मा ही भोगता हूँ। मेरा असली घर इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस भौतिक जगत से, 5 तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी परे, मूल वतन है जहां हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के सानिध्य में बैठी हूँ। उनके ज्ञान गुण और शक्तियों की किरणों का अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा भी अपने अनादि गुणों को इमर्ज करती हूँ, स्वयं में शांति सत्य शुद्धि का अनुभव करती हूँ। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मेरे अंदर समाए हुए इन 7ों गुणों को इमर्ज कर सकती हूँ। मैं इन 7 गुणों का समूह हूँ, मेरे में ये समाये हुए हैं, मुझे आत्मचिंतन द्वारा इन गुणों को जगाना है। ओम शांति।